लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव की आंखें वे खुली किताबों की भांति हैं, जहां हम हृदय में हो रहे हलचल को देख और पढ़ सकते हैं। आंखों के माध्यम हम बहुत सारी बातों को प्रकट करते हैं, विशेषकर उन सारी चीजों को जिन्हें हम अपने लफ्जों से व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। आंखों की राहों से किसी के दिल में उतरना एक व्यक्ति के लिए सहज होता है जो किसी के दिल में राज करता है। इस भांति यदि हम नयनों की भाषा की बात करें तो इसकी चमक हमारे लिए हृदय में व्याप्त खुशी को प्रकट करती है। आंखों में अंधेरा हमारे लिए गम और निराशा को व्यक्त करता तो वहीं आंखों का डबडबाना हमारे लिए हृदय की खुशी और दुख के भाव को बिना शब्दों को उच्चरित किए बहुत कुछ कह जाते हैं। तो वहीं खुली और फटी आंखों में हम किसी के डर और आश्चर्य को व्यक्त होता पाते हैं, क्योंकि बेशक आंखें भी होती हैं दिल की जुबां। श्रोताओं, तीसरे सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए आंखों का हाल प्रस्तुत करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों का पान करते हुए अपने हृदय में उठने वाली मनोभावनाओं की थाह लें। हम अपनी आंखों से किन चीजों का संचार करते हैं? क्या हम अपने हृदय की भावनाओं को स्वतः ही अपनी आंखों से व्यक्त करते हैं? क्या हमारी आंखें दूसरों के हृदयों में उठने वाली भावनाओं को समझने हेतु हमें मदद करती हैं, जो हमें उनकी मदद की पुकार में आगे आने को प्रेरित करते हैं?
जो प्रारंभ से प्रत्यक्ष दर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिसे आप जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायस की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर के वचनों को दिल से सुनने और उन पर अपनी निगाहें टिकाए रखने में मदद करें, क्योंकि उनके वचनों में हम अपने हृदय की प्यास को बुझता हुआ पाते हैं। चूंकि प्रभु वचनों से हमारे लिए जीवन का झरना कल कल प्रवाहित होता है। श्रोताओं, वर्ष के तीसरे रविवार को माता कलिसिया ईश वचन के रविवार स्वरूप मनाती है। ईश्वर का वचन जो हम ख्रिस्तियों के लिए जीवन का स्रोत है, अतः हम इसे अपने पूरे जीवन में आत्मसात करने हेतु बुलाए जाते हैं। आज के तीनों पाठों में हम इसे विशेष विषय वस्तु की अभिव्यक्ति पाते हैं। नबी नेहमिया के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए इसराइली प्रजा के मध्य ईश्वर के दिव्य वचनों को संहिता के रूप में घोषित किए जाने की बात प्रस्तुत करता है। चुनी हुई प्रजा, जिनमें हम छोटों से लेकर बड़ों की चर्चा सुनते हैं, सबों के लिए संहिता के वचनों को पढ़कर सुनाया जाता है, जिसे वे बड़े ध्यान से सुनते हैं। यह सुनना उन्हें वचनों को समझने में मदद करता है और वे उन वचनों को नतमस्तक होकर आदर से अपने लिए स्वीकार करते हैं। वचनों को सुनने के द्वारा हम ईश प्रजा की आंखों में खुशी और आनंद के भाव पाते हैं। नबी एज्रा, पुरोहित गण और सदुकी इसे ईश प्रजा हेतु प्रभु का दिन घोषित करते हैं। हम प्रभु के दिन में ईश्वर के वचनों का पान करने हेतु ईश मंदिर में आते हैं। हम कितनी तत्परता से अपने को ईश वचनों के लिए समर्पित करते और उन्हें अपने हृदय में संग्रहित करते हैं। प्रभु वचनों को सुनना क्या हमें आनंद, खुशी और सांत्वना से भर देता है? श्रोताओं, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें शरीर के विभिन्न अंगों के बावजूद एक शरीर होने की बात कहता है। यह हमें ईश्वर से मिले विभिन्न उपहारों की चर्चा करता है, जो हमें कलीसिया में एक अद्वितीय अंग बनाता है। ईश्वर, जिन्होंने हमें विभिन्न उपहारों से विभूषित किया है, हमें अलग अलग कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे हमें अपनी उन क्षमताओं को अपनी प्रजा के संग साझा करने को भेजते हैं, जिससे हम ईश्वर के प्रेम, उनकी आशीष और कृपा का माध्यम दूसरों के लिए बन सकें। अतः हम अपने उत्तरदायित्वों को किस रूप में संपादित करते हैं? क्या हम अपने गुणों को उदारता में दूसरों के संग साझा करते हुए दूसरों के लिए आनंद और खुशी का कारण बनते हैं? श्रोताओं, आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने लोगों के मध्य विश्राम दिवस के दिन अपने पिता के घर में जाते हुए अपने उन कार्यों का उल्लेख करते हैं, जिसे पूरा करने हेतु वे पिता के द्वारा दुनिया में भेजे गए। यह हमें यीशु के प्रेरित कार्यों की रूपरेखा को देखने और उन पर चिंतन करने का आह्वान करती है। वे समाज में उनके लिए अपने को देने आए जो हाशिए में पड़े हुए थे। वे जिनकी सुधि कोई नहीं लेता, यीशु एक चरवाहे, गुरु और मुक्तिदाता के रूप में उनके संग खड़े होते और उनके लिए कार्य करने को आए। उनकी प्रेरिताई के केंद्र बिंदु में हम गरीबों, परित्यक्त और समाज से बहिष्कृत लोगों को पाते हैं। इस कारण लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई होती और वे उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे होते हैं। श्रोताओं, ईश्वर ने हम सबों का अभिषेक किया है, इसलिए कि हम उनकी प्रेरिताई को अपने जीवन में आगे बढ़ा सकें। आइए हम माता मरियम से कृपा की मांग करें, वे हमें उद्धार बनाएं, हम अपने जीवन को दूसरों के संग साझा कर सकें, जो कई रूपों में हमसे कम भाग्यशाली हैं, जिससे हमारे द्वारा ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य पूरा हो सके और उनके नाम की महिमा सदैव होती रहे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को संचार की जयंती मनाने वाले पत्रकारों से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने आप से बाहर निकलकर दूसरों से मुलाकात करने का प्रोत्साहन दिया। वैटिकन के पॉल षष्ठम सभागार में दुनिया भर से उपस्थित संचार जगत के लोगों को संबोधित कर संत पापा ने कहा, संचार का मतलब है अपने आप से थोड़ा बाहर निकलकर दूसरों से बात करना, और संचार सिर्फ बाहर निकलना ही नहीं है बल्कि दूसरों से मुलाकात करना है। उन्होंने जोर देकर कहा, संचार करने जानना एक महान प्रज्ञा है। संत पापा ने पत्रकारों से कहा, आपका काम एक ऐसा काम है जो समाज का निर्माण करता है, कलीसिया का निर्माण और सभी को आगे बढ़ाता है जब तक यह सच्चा है। उन्होंने कहा कि हम सोच सकते हैं कि मैं हमेशा सच बातें कहता हूं, लेकिन क्या आप सच्चे हैं? केवल बातें नहीं, बल्कि क्या आप अपने भीतर से भी सच्चे हैं? यह भी एक बड़ी परीक्षा है। संत पापा के अनुसार संचार एक ईश्वरीय चीज है। उन्होंने सभी पत्रकारों को उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आप जो काम करते हैं उसके लिए धन्यवाद। तब संत पापा ने अपने तैयार भाषण को वैटिकन संचार विभाग के अध्यक्ष को सौंपते हुए सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। संचार जगत की जयंती का शुभारंभ पत्रकारों के संरक्षक संत फ्रांसिस डी सेल्स की स्मृति में संत जॉन लैथरन महागिरजा घर में सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ। जयंती के उद्घाटन में हर पत्रकार के लिए दो जरूरी साधन पर प्रकाश डाला गया, दिल और उम्मीद। ये मूल्य उत्सव के दो उद्घाटन पलों में प्रतिध्वनित हुए। रोम विकारेट के सामाजिक संचार कार्यालय के निदेशक फादर जूलियो अल्बेनेसे के नेतृत्व में पश्चाताप की प्रार्थना और कार्डिनल रीना की अध्यक्षता में ख्रिस त्याग कार्यक्रम के दौरान संत पापा फ्रांसिस के 59वें विश्व संचार दिवस का संदेश नम्रता के साथ आशा को साझा करने के आह्वान को रेखांकित किया गया। आशा एक ऐसा सद्गुण है जो जुबली के मिशन का केंद्र बिंदु है। अपने प्रवचन में कार्डिनल रीना ने कहा कि जयंती दया का समय है, जहां ध्यान पापों से हटकर ईश्वर की क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति पर केंद्रित होता है। उन्होंने पोप फ्रांसिस की आशा के संचारक बनने और संचार को निरस्त करने के निमंत्रण की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पोप फ्रांसिस ने मुंबई के महाधर्मदर्श कार्डिनल ओस्वल क्रेसिस का इस्तीफा पत्र स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर महाधर्मदर्श जॉन रोड्रिगस को नियुक्त किया है। महाधर्मदर्श जॉन रोड्रिगस का जन्म 21 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। रोम के लातेरन यूनिवर्सिटी से लैशन सेट की पढ़ाई करने के बाद उनका पुरोहित अभिषेक 18 अप्रैल 1998 को मुंबई धर्म प्रांत के लिए हुआ था। संत पॉलस के मन परिवर्तन महापर्व और ख्रिस्तीय एकता प्रार्थना सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार शाम 5:30 बजे संत पापा फ्रांसिस रोम के संत पॉलस महागिरजा घर में संध्या वंदना के साथ इस प्रार्थना सप्ताह का समापन करेंगे और रविवार 26 जनवरी को ईश्वचन रविवार के अवसर पर संचार की जयंती हेतु समारोही ख्रिस्त्या का अनुष्ठान वे संत पेत्रुस महागिरजा घर में संपन्न करेंगे।
संचार की दुनिया की जयंती 24 से 26 जनवरी को तय है। विश्व संचार जुबली के लिए विश्व के विभिन्न देशों से संचार पेशेवर पत्रकार मीडिया कर्मी रोम की तीर्थ यात्रा पर आज वाटिकन में एकत्रित हैं। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में उनसे मुलाकात की और अपना संदेश दिया। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 संदेश लिखा। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं उन सभी संचार पेशेवरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सत्य की खोज करने और युद्ध की भयावहता को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने पिछले वर्ष अपनी जान गंवाई है, जो पत्रकारों के लिए सबसे घातक वर्षों में से एक है। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, संचार की दुनिया के लिए इस जयंती पर मैं उन सभी पत्रकारों की रिहाई का आह्वान करता हूं जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से कैद किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता हम सभी की स्वतंत्रता को मजबूत करती है। उनकी स्वतंत्रता का मतलब है सभी के लिए स्वतंत्रता। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं दुनिया भर के संचारकों से आशा की कहानियां बताने की अपील करता हूं। अपनी कहानी कहने को आशावादी होने दें। अच्छाई के छिपे हुए टुकड़ों की तलाश करें। तब भी जब सब कुछ खो गया हो और लोगों को सभी आशाओं के खिलाफ आशा करने दें। और संत पापा फ्रांसिस ने आज सुबह वाटिकन के प्रेरितिक भवन में पहले पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो क्विंटेरो के साथ मुलाकात की और उसके बाद हैती के परिवर्तनकालीन परिषद के अध्यक्ष लेस्ली वोल्टियर से मुलाकात की। इसके बाद उपहारों का आदान प्रदान हुआ और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के कंसिस्ट्री सभागार में फ्रांस के मेजर और प्रिपेरेटरी सेमिनरी के रेक्टरों से उनकी जयंती तीर्थ यात्रा के अवसर पर मुलाकात की। संत पापा ने इस बात की पुष्टि की कि सेमिनरी क्रिश्चिय जीवन की सुसंगत गवाही दे सकती है और भविष्य के पुरोहितों के विकास के लिए अनुकूल स्थान बन सकती है यदि वहां अनुभव किए जाने वाले मानवीय रिश्तों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का ध्यान रखा जाए। संत पापा ने याद दिलाया कि सेमिनरी में खुद को पेश करने वाले उम्मीदवार आज पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सेमिनरी के छात्र विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों, विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं। इतने विविध समुदाय के लिए एक मानवीय आध्यात्मिक, बौद्धिक और प्रेरितिक प्रशिक्षण का प्रस्ताव करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। यह कार्य आसान नहीं है और इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देना और व्यक्तिगत सहयोग पहले से कहीं अधिक परिहार्य है। संत पापा फ्रांसिस ने भारतीय कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुआकार्ड को अंतरधार्मिक वार्ता हेतु गठित विभाग का नया प्रीफेक्ट नियुक्त किया है। कार्डिनल कुआकार्ड राज्य सचिवालय में संत पापा की प्रेरितिक यात्राओं के समन्वयक की भूमिका भी निभाते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।